ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है, जिसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जायेगा। इसके अलावा योजना में कर्मचारी के निधन के बाद परिवार पेंशन 60% कर दी गई है। वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति के लिए बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिनका विलय विज्ञान धारा योजना में कर दिया गया है। इसके लिए 10,579 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और प्रतिस्थापन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति में योगदान के लिए सरकारी कर्मचारियों की सराहना की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मंत्रिमंडल के फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि ये योजना उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 113वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री शाह ने कहा कि अब वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए शीघ्र ही एक नई आत्मसमर्पण नीति लेकर आएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर तथा बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि MSME बड़े उद्योगों और कारोबारियों के लिए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि MSME देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक का दूसरा दौर कल सिंगापुर में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गोलमेज बैठक में भाग लेंगे। यात्रा के दौरान सभी केंद्रीय मंत्री सिंगापुर में अपने समकक्षों के साथ भी बैठक करेंगे और शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियेरा आज 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्री वियेरा मंगलवार को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में आज तेज बारिश की आशंका जताई है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूरे गुजरात में व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अमरेली, भावनगर, सूरत और भरूच जैसे तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।